पहली रसोई की रस्म और सासू माँ की गैर मौजूदगी। दादाजी ने कहा, अरे हम तो बातों ही बातों में भूल ही गए। हमारी बेटी का आज ससुराल में पहला दिन है। अगर इस घर में कोई महिलाएं होती तो वे आपको बताती कि घर में नई बहू को पहले दिन क्या खास रस्में करनी पड़ती हैं। आस्था ने हैरानी से दादाजी की ओर देखते हुए कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादाजी, आप क्या कहना चाहते हैं? दादाजी ने आस्था से कहा, मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर आज तुम्हारी दादी सास जिंदा होती तो वे इस वक्त तुम्हें घर में नई बहू की पहली रसोई की रस्म जरूर करवाती। आस्था ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं दादाजी, दादी सास ना सही लेकिन मेरी सासू माँ तो यहाँ होगी ही। लेकिन अरमान जी की माँ कहाँ है, वे नज़र नहीं आ रही हैं? अचानक आस्था के इस कथन से सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। सभी इधर उधर देखने लगे। ध्रुव मन ही मन सोचने लगा, यार भाभी को कोई तो रोको, गलती से भी अगर उस अरमान ने अपनी माँ का नाम सुन लिया तो सिंघानिया मेंशन में एक तूफान आ जाएगा। दादाजी ने बात बदलते हुए कहा, अरे बेटा ये रस्म वस्म तो बात की बात है, अभी तुम यहाँ पर नई नई आई हो, अभी तुम्हें किसी तरह की कोई भी रस्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम पहले अच्छी तरह से सब चीज़ों को समझ लो, अपने इस नए घर को अच्छी तरह से देखो, उसके बाद तुम्हारा दिल करे तो कुछ बना लेना, वरना मत बनाना। दादाजी ने बात टाल दी। आस्था थोड़ी सी हैरान हो गई कि दादाजी ने उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, लेकिन फिलहाल उसने किसी से ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछा और वैसे भी उसका दिल अजीब सा बेचैन हो रहा था। दादाजी ने आहान की ओर देखते हुए कहा, आहान ये अरमान अभी तक नीचे क्यों नहीं आया, जाकर देख कर आओ, अरमान कहाँ रह गया है, क्या उसे आज नाश्ता नहीं करना है या ऑफिस नहीं जाना है? अरमान का नाम सुनकर आस्था के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसे अरमान की कही हुई एक एक बात और साथ ही साथ अरमान का उस पर गोली चलाना सब याद आने लगा। आस्था ने तुरंत किसी और के कुछ कहने से पहले घबरा कर कहा, दादाजी मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। आस्था वहां से जाने लगी। आहान समझ गया कि आस्था वहां से क्यों जा रही है। आहान ने जल्दी से कहा, भाभी प्लीज रुकिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं यही बताने वाला था कि भाई तो आज घर पर है नहीं। सुबह सुबह ही जब हम सब जॉगिंग पर जा रहे थे उस वक्त मैंने भाई को बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने भाई को आवाज़ भी लगाई थी लेकिन भाई ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने देव को फ़ोन किया, देव भाई का बॉडीगार्ड और पर्सनल असिस्टेंट दोनों ही हैं। मैंने देव से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तब देव ने बताया कि भाई अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए दो दिनों के लिए पेरिस जा रहे हैं। आस्था अपने कमरे की ओर जा रही थी। आस्था ने ये सब सुनकर तुरंत अपने कदम रोक लिए और राहत की सांस ली। सभी लोग समझ गए कि आस्था अभी इस वक्त अरमान को फेस नहीं करना चाहती है। आखिरकार करती भी क्यों, जिस लड़की पर शादी के पहले दिन ही उसके पति ने गोली चलाई तो भला वो लड़की उसका सामना कैसे कर सकती थी। आस्था के दिल में जो डर था वो थोड़ा सा कम हुआ और वो दादाजी की ओर देखकर बोली, दादाजी भले ही यहाँ पर कोई महिलाएं ना हो लेकिन अगर पहली रसोई की रस्म होती है तो मैं वो रस्म जरूर पूरी करूंगी। आस्था ने दादाजी से आशीर्वाद लिया और रसोई की तरफ जाने लगी। रसोई में जाकर आस्था ने देखा कि वहां पर नौकरों की फौज लगी हुई थी। सभी सर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए थे। मैडम आप बस हमें हुक्म दे दीजिए कि क्या बनाना है, हम सब मिलकर रेडी कर देंगे। आस्था ने उन सब की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों की आज छुट्टी है, आज का सारा नाश्ता मैं खुद ब खुद बना लूंगी। आस्था ने अपने अकॉर्डिंग अपने अंदाज में नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। वो अब तक अरमान को फेस करने से डर रही थी लेकिन जैसे ही उसने ये सुना कि अरमान दो दिनों के लिए पेरिस गया है तो उसने राहत की सांस ली और बिना घबराए बेझिझक होकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। फ्लैशबैक, क्योंकि आस्था जहाँ रहती थी वहाँ पर हमेशा उसने नॉर्मल इंडियन खाना ही खाया था, किसी तरह का कोई फास्ट फूड वगैरह उसने कभी नहीं खाया था, ना ही उसकी नानी उसे खाने देती थी। और जब भी आस्था का दिल कभी मोमोज वगैरह या चाउमीन वगैरह खाने का होता था तो उसकी नानी उसे डांट दिया करती थी, किस तरह के उल्टी सीधी चीज़ खाकर क्या तुझे पेट खराब करना है। तब आस्था अपनी नानी के डर से खुद को रोक लेती थी, कुछ भी नहीं खा पाती थी। फ्लैशबैक एंड, आज उसने सभी के लिए देसी नाश्ता तैयार किया था। आस्था के बने हुए आलू के पराठे की खुशबू बाहर बैठे हुए सभी लोगों की भूख बढ़ा रही थी और ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया और बोला, भाभी क्या बना रही हैं आप, खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है, मुझे खाने की स्मेल से ही इतनी तेज भूख लगी है कि मेरे पेट के अंदर के जो चूहे हैं वो पूरी तरह से कबड्डी खेल रहे हैं, अब जल्दी से खाने के कुछ ला दीजिए। आस्था उन सबकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। जल्दी ही आस्था ने अपने बनाए हुए आलू के पराठे साथ में दही और थोड़ा सा बटर सर्व करके सबके सामने रख दिया। सबकी आंखों में हैरानी थी क्योंकि उनके घर में कोई महिलाएं खाना नहीं बनाती थी, ज्यादातर खाना तो नौकर बनाया करते थे या फिर खाना बाहर रेस्टोरेंट से आया करता था। लेकिन आज आस्था के बनाए हुए नाश्ते को इस तरह से देखकर वे सब इमोशनल होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आस्था ने सबको इस तरह से खामोश देखकर कहा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलती कर दी या नाश्ते में कोई कमी रह गई है? वो एक्चुअली मुझे मेरी नानी ने बताया भी था कि जब भी किसी लड़की की नई नई शादी होती है तब उसे मीठे में कुछ बनाना होता है, तो इसीलिए मैंने मीठे के तौर पर थोड़ा सा हलवा बनाया है, साथ मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बना दिए। आप सब नाश्ते को इस तरह से देखकर खामोश हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इस तरह से हैवी खाना वगैरह खाने की आदत नहीं है,
आस्था की आंखों में उदासी आ गई। आकाश ने तुरंत कहा, नहीं भाभी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप नहीं जानते कि हमने कितने दिनों के बाद इस तरह का कोई खाना देखा है। सच पूछे तो आपके पराठे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। गर्मा गर्म लच्छे वाले पराठे और दही, ऊपर से इस पर बटर, मजा ही आ गया। मुझे तो पंजाब वाली फीलिंग आ रही है, मानो कि मैं कहीं पंजाब के किसी गाँव में बैठा हूँ और इस तरह से खाना खा रहा हूँ। आकाश ने बिना किसी की परवाह किए जल्दी एक पूरा पराठा और दही में डुबोकर खाना शुरू कर दिया। आस्था उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। जल्दी ही आकाश को देखकर बाकी सब भी पराठा लेकर खाने लगे और दादाजी मुस्कुराकर सबको देख रहे थे। आस्था ने सभी को थोड़ा थोड़ा हलवा, जो उसने बनाया था, सर्व किया। दोस्तों, रिव्यू दीजिए प्लीज और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए।